दीवा जैसे तैसे करके अपनी माँ प्रार्थना के साथ इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने यही सोचा था कि वो अपना घर और बाकी कीमती चीजें बेचकर अपने पापा को जेल से बाहर निकाल लेंगी, लेकिन इस वक्त उसके बॉयफ्रेंड रक्षित ने उसके ऊपर एक नया बम फोड़ दिया था। रक्षित न केवल दीवा का बॉयफ्रेंड था, बल्कि वो उनकी कंपनी में मैनेजर भी था। पूरा घोटाला कनिष्का की वजह से हुआ था। कनिष्का और रक्षित मिले हुए थे, इस वजह से रक्षित ने उनके घर पर भी कब्जा कर लिया था। अब वो गोयंका मेंशन से प्रार्थना और दीवा को बाहर निकालने आया था। साथ ही उसने ये भी कह दिया था कि वे अपने कपड़ों के अलावा किसी दूसरी चीज को भी हाथ ना लगाएं। दीवा ने गहरी सांस ली और प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गईं। कुछ ही देर में वे दोनों अपने अपने कपड़ों के साथ नीचे आ चुकी थीं। घर से बाहर निकलने से पहले प्रार्थना ने एक नज़र घर को देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा नहीं था कि दीवा को बुरा नहीं लग रहा था, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए थे। दीवा ने प्रार्थना का हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहा, बस कुछ दिनों की बात है मॉम, हम डैड को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपने घर को वापस हासिल करेंगे और इस घटिया आदमी को यहाँ से थक्के देकर बाहर निकालेंगे। दीवा की बात सुनकर रक्षित जोर से हंसा। वो बोला, ये लड़की सच में बेवकूफ है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसे ये उम्मीद है कि ये सब कुछ फिर से हासिल कर लेगी। वैसे तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। इतना कहकर रक्षित के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वो दीवा के पास आया और उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोला, पिछले 4 साल से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, तो इतना एहसान तो कर ही सकता हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, बस बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे दीवा। रक्षित की बात सुनकर दीवा को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया कि वो रक्षित का मुंह तोड़ दे। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं बेवकूफ़ हूँ तो तुम बेशर्म हो। तुम्हें क्या लगता है, कल रात तुम्हें उस लड़की के साथ बेड पर देखने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार या रिलेशनशिप जैसी बातों पर यकीन होगा? वो तो मैंने इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए किया था। मेरा यकीन करो, मैं उससे ज़्यादा तुम्हें खुश रखूंगा। ठीक है, पहले बदला लेने के लिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया, पर तुम मुझे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। तुम्हें हॉस्पिटल में काम भी नहीं करना होगा। देखो, तुम अपने आप को कभी नहीं छुड़ा पाओगी, तो ऐसे में यही सही रहेगा कि तुम मेरे साथ मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहो, रक्षित ने सिर हिलाकर कहा। दीवा के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने ना में सिर हिलाया और कहा, फिलहाल तो मेरे पास एक अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं रोड पर झाड़ू लगाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के लिए पानी का एक गिलास भी नहीं लेकर आऊंगी। दीवा ने रक्षित को धकेलकर खुद से दूर किया और फिर प्रार्थना का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। रक्षित ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली थीं। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य तैरने लगे थे। उसके माता पिता, जिन्होंने न जाने क्यों एक बड़ी सी बिल्डिंग से खुदकुशी कर ली थी। वो उस वक्त ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये किसकी वजह से और क्यों हुआ था, इस बारे में उसे अंदाजा था। तुम मुझसे नफरत कर रही हो दीवा गोयंका, जबकि तुम्हें अपने बाप से नफरत करनी चाहिए। उनकी वजह से मेरे मॉम डैड की मौत हुई। मैंने जो हासिल किया है उस पर मेरा हक है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर कोई गलत और घटिया इंसान है तो वो तुम्हारा बाप नवीन गोयंका है, रक्षित ने मन ही मन कहा। उसने दीवा को इसीलिए मोहरा बनाया था ताकि अपने माँ बाप की मौत का बदला ले सके। रक्षित यही चाहता था कि दीवा उसके पास वापस आ जाए, पर वो तो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। गोयंका मेंशन से बाहर आते ही दीवा ने प्रार्थना से कहा, आई एम रियली सॉरी मॉम, जो मैं आपके और डैड के लिए कुछ नहीं कर पाई। दीवा की आंखें नम होने लगी। ऐसा मत कहो बेटा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तो ये डर सता रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, प्रार्थना ने चिंतित स्वर में कहा। फिलहाल हम किसी होटल में चलते हैं, उसके बाद कोई फ्लैट रेंट पर देख लेंगे, दीवा ने जवाब दिया और अपने मोबाइल से होटल में कमरा बुक करवाया। दीवा इंडिया में अभी आई थी और अस्पताल में काम करते हुए उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। वो लोगों से आसानी से घुलमिल नहीं पाती थी, इस वजह से उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं बने थे जिससे वो मदद के लिए कॉल कर सके। फिलहाल के लिए दीवा की प्रायोरिटी बदला लेना या कुछ और करने से ज्यादा अपनी माँ का और खुद का ध्यान रखना था। उनके सर से छत तक छिन गई थी, उन्हें फिर से अपनी लाइफ को स्टेबल करना था। अगले दिन दोपहर 12 बजे के करीब दीवा हॉस्पिटल के चेंजिंग रूम में थी। वो अभी अभी किसी सर्जरी से बाहर आई थी। उनके साथ जो भी हो रहा था उसके बारे में दीवा ने किसी को कुछ नहीं कहा, बस वो हमेशा की तरह शांति से अपना काम कर रही थी। दीवा हैंड वॉश कर रही थी तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो सामने उसकी असिस्टेंट नर्स सिस्टर लीजा खड़ी थी, जो उम्र में लगभग 35 साल के आसपास थी। लीजा हॉस्पिटल में काफी टाइम से काम कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो काफी पॉजिटिव भी रहती थी। उसने दीवा के पास आते ही चहकते हुए कहा, डॉक्टर गोयंका, आपने फिर से कमाल कर दिया।
कौन कह सकता है कि आप इतनी कम उम्र में भी इतना अच्छे से काम करती हैं। थैंक यू सिस्टर, लेकिन ये मैंने अकेले नहीं किया है, पूरी टीम मेरे साथ थी, दीवा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद दीवा वापस अपने हाथ धोने लगी। वो थक गई थी क्योंकि उसने लगभग 4 घंटे ऑपरेशन थिएटर में बिताए थे। उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। दीवा बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन सिस्टर लीजा कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसने कहा, नहीं डॉक्टर, हम सब तो बस आपको असिस्ट कर रहे थे। सब जानते हैं कि आप सीनियर डॉक्टर यथार्थ मल्होत्रा की टक्कर की हैं। मैंने तो डीन को आपकी तारीफ करते हुए भी सुना था। उन्होंने बोला कि इतना टैलेंटेड डॉक्टर आज तक यहाँ नहीं आया। वो आपको प्रमोशन देने के बारे में कह रहे थे। प्रमोशन मिलने के बाद आप हम सबको पार्टी देंगी ना? हाँ, मैं आप सबको पक्का एक अच्छी सी पार्टी दूंगी, दीवा ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर यथार्थ मल्होत्रा का जिक्र आते ही दीवा उसके बारे में सोचने लगी। वो उसके सीनियर डॉक्टर थे। ये दीवा की खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहें कि उसके इतने टैलेंटेड होने की वजह से यथार्थ मल्होत्रा उससे काफी चिढ़ा हुआ रहता था। आखिर उसकी पोजीशन जो खतरे में आ गई थी। इतनी कम उम्र में भी दीवा अच्छा कर रही थी, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उसे याद करने के बाद दीवा वहां से बाहर निकली और चेंज करने के बाद वो अपनी केबिन की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ लगा रखा था। दीवा को भूख तो लगी थी, पर उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। पिछले 2-3 दिनों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। पहले आर्यांश कपूर के साथ नशे में रात बिताना, तो उसके बाद रक्षित का इस तरह उसे धोखा देना। ऊपर से उनका घर भी छिन गया था, उसके पापा जेल में थे। दीवा कुछ नहीं कर पा रही थी, इस बात की उसे काफी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। दीवा कदमों से अपने केबिन की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक किसी की आवाज सुनकर वो वहीं पर रुक गई। वो आवाज उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। सर, मिस्टर सौरभ बजाज इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा मौका है। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। और वो आदमी बोलते हुए रुक गया, मानो आगे की बात कहने से वो हिचकिचा रहा था। दीवा उस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे अगली आवाज आई, जिसे तो वो किसी भी हाल में नहीं भूलने वाली थी। वो आर्यांश कपूर की आवाज थी।
आर्यांश ने इस वक्त अपने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसने एक कश लगाया और अपने दिलकश लेकिन सर्द आवाज में कहा, अच्छा मौका है तो फायदा उठाओ ना, जाकर उसे मार दो और ऐसे साबित कर देना जैसे ये सब डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ हो। किसी को कानो कान भी भनक नहीं होनी चाहिए। अब दीवा को समझ आ गया था कि वो पास खड़ा आदमी सार्थक खन्ना था। वही सार्थक खन्ना को भी आर्यांश की बात सुनकर झटका सा लगा। वो सौरभ खन्ना को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था, जबकि आर्यांश ने बेरहमी से उसे मारने के सीधे सीधे ऑर्डर दे दिए थे। ऊपर से सारा इल्जाम भी अस्पताल स्टाफ और उसकी सर्जरी करने वाले डॉक्टर पर आने वाला था। ये सब सुनकर दीवा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आर्यांश की ये हरकत उन पर काफी भारी पड़ने वाली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या दीवा आर्यांश को रोकेगी? एक बार फिर उनकी मुलाकात होगी। एंड प्लीज, आप पढ़कर कॉमेंट किया करो यार, मुझे कहानी को ट्रेंडिंग में लेकर जाना है।